आज है 25 अप्रैल दिन मंगलवार। स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में मारे गए सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़कर 25 हुई।
शासन सफल नहीं हो पा रही है ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। सूचना तंत्र की विफलता है, आपको कैसे नहीं पता लग पाता आपके ऊपर एम्बुश हो सकता है।
भारत प्रशासित कश्मीर में पीडीपी नेता की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद तनाव और बढ़ा। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख का दावा, कानून हाथ में लेने की किसी की हिम्मत नहीं होगी।
सहारनपुर में भी हमने 10 आदमी ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिए हैं, बाकी खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी।
विनाशकारी भूकंप के 2 साल बाद नेपाल में कितने बेहतर हुए हैं हालात।
लाखों लोग आज भी शिविर में रहने के लिए बाध्य की अवस्था है। 2 बरसात गुजर गए, 3री बरसात आने वाली है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेति से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को माओवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कम से कम 25 जवान मारे गए हैं और 7 अन्य घायल हैं। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने बीबीसी को ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सीआरपीएफ के 7 जवान लापता हैं। पुलिस के अनुसार चिंता गुफा के बुरकापाल इलाके में सीआरपीएफ के जवानों का एक दल रोड ओपनिंग पार्टी के तौर पर इलाके में गश्त पर था। इस इलाके में सड़क बनाई जा रही थी जिसकी सुरक्षा के लिए जवानों का दल निकला था। उसी समय पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने हमला किया। मारे गए सभी जवान सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के थे। इस हमले के बाद माओवादी मारे गए जवानों के हथियार भी अपने साथ ले गए। फ्रांस में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ले पेन ने कहा है कि वह नेशनलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ रही हैं। एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह दलगत विचारों से ऊपर होंगी। पहले चरण के मतदान में लपेन मध्यमार्गी इमैनुअल मैक्रों के बाद दूसरे स्थान पर रही थीं। मरीन ले पेन ने कहा,
Je pense que nous approchons du moment décisif. Moi, j'ai toujours considéré que
मैं समझती हूँ कि हम अहम लम्हे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने हमेशा यही सोचा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को सभी फ्रांसीसी नागरिकों का राष्ट्रपति होना चाहिए। कही गई बातों पर अब अमल करने का वक्त है। यही कारण है कि मैंने महसूस किया कि मुझे खुद को नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष पद से अलग कर देना चाहिए। ये थे मरीन ले पेन के शब्द। राष्ट्रपति पद के लिए लपेन और मैक्रों के बीच दूसरे और निर्णायक दौर का चुनावी मुकाबला 7 मई को होगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रंप ने सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की। ट्रंप ने कहा,
And the council must be prepared to impose additional and stronger sanctions on North Korean nuclear and ballistic.
परिषद को उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने चाहिए। उत्तर कोरिया दुनिया के लिए असली खतरा है, चाहे हम इस पर बात करें या ना करें। उत्तर कोरिया बड़ी समस्या है और हमें इसे सुलझाना ही होगा। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अमरीका ने सीरिया के 270 से अधिक सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर यह कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में सीरिया में हुए रासायनिक हमले के लिए की गई है। इसके तहत सीरियाई वैज्ञानिक अध्ययन और शोध केंद्र के कर्मचारियों की अमेरिका में स्थित संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। अमेरिका का मानना है कि इस हमले में इस्तेमाल की गई गैस इसी केंद्र में तैयार की गई थी। चिली के समुद्री तट पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.1 आंकी गई। राजधानी सेंटियागो में चश्मदीदों ने बताया कि भूकंप से इमारतें हिलने लगीं। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की खबरें नहीं हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर जर्मनी के विदेश मंत्री सिगमर गैब्रियल मानवाधिकार संगठनों से मिले तो वो जर्मन विदेश मंत्री के साथ अपनी बातचीत रद्द कर सकते हैं। गैब्रियल का उस मानवाधिकार संगठन से मिलने का कार्यक्रम है जो फलिस्तीनियों के उपचार के संबंध में वरिष्ठ इसराइली नागरिकों की गवाही ले रहा है। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सरीना विलियम्स ने कहा है कि इली नस्तासे की उनके होने वाले बच्चे के लिए की गई टिप्पणी नस्ली है। उन्होंने इसकी पूरी जांच कराने की मांग की है। इली नस्तासे को हाल ही में यह कहते हुए सुना गया था कि विलियम्स का बच्चा क्या चॉकलेट विद मिल्क होगा। बीबीसी समाचार।
بی بی سی کے دلی اسٹوڈیو سے اپنی گھڑی ملائیے. وقت ہوا ہے 6:35. فی الحال یہاں تاپمان ہے لگ بھگ 38 ڈگری سیلسیس, جبکہ مدھیہ بھارت میں کئی جگہ پارا 40 ڈگری کو پار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دن چڑھتے چڑھتے گرمی اور بڑھے گی, اور اس بڑھتی گرمی کے بیچ 36 گڑھ میں آج کافی ہلچل رہے گی, جہاں کل سکما ضلع میں نکسلی حملے میں مارے گئے سرکشا کرمیوں کی سنکھیا بڑھ کر 25 ہو چکی ہے. اس گھٹنا نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ سرکشا کرمیوں سے کہیں چوک ہوئی یا نکسلیوں کا نیٹ ورک ان سے بہتر, بہت بہتر ہے. اس خبر پر اور جانکاری دے رہے ہیں رائے پور سے آلوک پتل.
سکما کے چنتا گوبھا علاقے میں سی آر پی ایف کے جوانوں پر ماؤوادی حملے کو لے کر جو خبریں اب تک سامنے آئی ہیں اس کے انوسار جوانوں کی دو ٹیم سڑک نرمان کے دوران روڈ اوپننگ کے لیے نکلی ہوئی تھی. دوپہر میں جوانوں کا ایک دل کھلے میں اپنے ہتھیار چھوڑ کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور سرکشا کی یہ چوک ان پر بھاری پڑ گئی. ماؤوادیوں کے اس حملے میں گھائل ایک جوان شیر محمد کا دعویٰ ہے کہ ماؤوادی وہاں پہلے سے ہی پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے.
ہمارا سڑک نرمان کا کام چل رہا تھا یونٹ کا, تو وہاں پہ ہم لوگ یونٹ والے لگے ہوئے تھے جوان, اور وہاں پہ پہلے نکسلیوں نے گرامیڑ کو بھیجا کہ ہماری لوکیشن چیک کرنے کے لیے کون کون سی لوکیشن پہ جوان لگے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد میں گرامیڑ بھی ساتھ میں تھے, جن کے بعد ہتھیار AK-47 تھا اور مہیلا نکسلی بھی تھی, اور یہ ملٹری دل جو ہوتا ہے بلیک یونیفارم والا, انہوں نے لگ بھگ 300 ٹوٹل 300 نکسلیوں کا اسٹینڈ تھا, انہوں نے ہمارے اوپر حملہ بولا ہے.
راجیہ کے مکھیہ منتری رمن سنگھ کا کہنا تھا کہ سکما ماؤوادیوں کا مکھیالے ہے, اور اس طرح کی گھٹناؤں کے بعد ان کی چنتا اس بات کو لے کر ہے کہ بھوشیہ میں اس طرح کے حملے نہ ہوں.
سکما ضلع اور سکما ضلع کا چنتالاڈ, چنتا گفا, برکا پال, یہ ان کے لیے بھی خندق کی آخری لڑائی ہے, اور وہاں کے سڑک پل کے بنانا اس میں ہمارے جوان قریب قریب لگاتار جاتے ہیں, اور ایسے ایمبوس میں جب کنٹینیوس ایک روڈ بھی جاتے ہیں تو یہ پریشانی ہوتی ہے. آگے یہی چنتا ہے کہ کم سے کم کیجولٹی ہو.
لیکن 36 گڑھ ودھان سبھا میں نیتا پرتیپکش ٹی ایس سنگھدیو کا کہنا ہے کہ سی آر پی ایف جوانوں پر یہ حملہ سیدھے سیدھے راجیہ کے سرکشا تنتر کی وفلتا ہے.
کہیں نہ کہیں سوچنا تنتر کی بات کہیں, تکنیکی اپیوگوں کی کمی کی بات کہیں, شاشن سفل نہیں ہو پا رہی ہے ایسی گھٹناؤں کی پنراورتی کو روکنے کے لیے. پراتھمکی سوچنا تنتر کی وفلتا ہے, آپ کو کیسے نہیں پتا لگ پاتا کہ آپ کے اوپر ایمبوش ہو سکتا ہے.
وپکش کے ان آروپوں کے بیچ اب سے تھوڑی دیر بعد دیش کے گرہ منتری راجناتھ سنگھ رائے پور پہنچنے والے ہیں, جہاں وہ مارے گئے جوانوں کو شردھانجلی دیں گے. اس کے علاوہ راجیہ میں سرکشا بلوں کے اعلیٰ ادھیکاریوں کے ساتھ وہ ایک اچھ استریہ بیٹھک میں بھی بھاگ لیں گے. رسم ادائیگی سے بھرے بیانوں سے الگ سرکار کا اگلا رخ کیا ہوگا اس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں. آلوک پتل, بی بی سی, 36 گڑھ.
بھارت کی خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو میں ایڈیشنل ڈائریکٹر اور 36 گڑھ کے پولیس مہا نردیشک جیسے پدوں پر رہے پورو اعلیٰ پولیس ادھیکاری وشو رنجن کا ماننا ہے کہ ماؤوادیوں سے لڑائی تمام کوششوں کے بعد بھی اتنی آسان نہیں ہے.
ماؤوادیوں نے اپنے کو کافی تیار کیا ہے, ان کی ٹریننگ کیمپس جو چلتی ہیں اس میں جس طرح کی ٹریننگ انہیں دی جاتی ہے, ملٹری کو جس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے قریب قریب اس سے اس کے سمکش ٹریننگ ہے, اور اس لیے ان کو اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس جو ہوتی ہے لڑائی کی اس کے بارے میں بہت اچھی جانکاری رہتی ہے. نکسلی ہر انکاؤنٹر کا وشلیشن کرتے ہیں اور بہت گہرائی میں وشلیشن کرتے ہیں. پولیس میں اس طرح کی کوئی سنگٹھن نہیں ہے, یا خود بھی پولیس اس کا اس طرح سے گہرائی سے وستار سے اس کا وشلیشن نہیں کرتا, اس لیے وہ سیکھ بھی نہیں پاتا ہے. سی آر پی کوبرا ہے, بی ایس ایف ہے, آئی ٹی بی پی ہے, ان کو بنیادی ٹریننگ تو لڑنے کی ہے. نکسلیوں سے لڑنے کی جو وشیش جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے.
تازہ حملے کے بعد ایک بار پھر بستر میں سینا کی تعیناتی کی مانگ اٹھ رہی ہے, سرکار کی تیاری بھی نظر آتی ہے, آپ کیا سوچتے ہیں؟
مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہم ایسی استھتی میں پہنچے ہیں جہاں سینا کو اس میں ڈالنا اچت ہوگا. یہاں پر بہت سارے آدیواسی رہتے ہیں, اس میں سب آدیواسی نکسلیوں کے ساتھ رہی ہیں. جو جس طرح کی لڑائی پولیس لڑ سکتی ہے اسی طرح کی لڑائی کو لڑنے کے لیے سینا کو بلانا کوئی بہت مناسب نہیں ہوگا.
پچھلے 2 سالوں میں لگاتار ماؤوادیوں کے ختم ہونے, ان کے بیک فٹ پر ہونے کے دعوے کیے گئے ہیں, آپ اس سے سہمت ہیں؟
جو ماؤوادی لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ دیرکالین یدھ ہوگا, اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اس دیرکالین یدھ میں بہت بار ان کو پیچھے ہٹنا پڑ سکتا ہے, لیکن انتتہ وہ اپنے گنتوے کو حاصل کریں گے. तो ये संभव है कि पिछले साल कुछ हद तक माओवादियों को बैकफुट में डाला गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि माओवादी उससे परास्त हो गए या एक साल में परास्त हो जाएंगे।
ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक विश्व रंजन, उनसे बात कर रहे थे आलोक पुतुल, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अब टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आलोक, ये बताएं कि रायपुर से छपने वाले अखबारों में सुकमा नक्सली हमले की खबर किन शब्दों में, किस तरह से छपी है आज?
रायपुर के हिंदी और अंग्रेजी के सारे अखबारों में सुकमा में हुए माओवादी हमले की खबरें छाई हुई हैं। पहले पन्ने के अलावा अंदर के कई कई पन्ने इसी घटना से जुड़ी हुई खबरों और टिप्पणियों से भरे हुए हैं।
जी, लगता है रायपुर से आलोक पुतुल से हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनके पास चलने की। इस बीच हम रुख कर रहे हैं मध्य भारत से उत्तर भारत का। जम्मू कश्मीर राज्य में, भारत प्रशासित कश्मीर में इस समय यूं तो ठंडक है और दिन में भी गर्मी इतनी नहीं होती कि पसीना बहने लगे, जैसा कि उत्तर भारत में, इधर मध्य भारत में कई हिस्सों में आजकल हो रहा है। लेकिन कल सत्तारूढ़ पीटीपी पार्टी के नेता अब्दुल गनी डार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसने वहाँ पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। इस खबर के इर्द गिर्द दिल्ली, राजधानी दिल्ली और श्रीनगर में कल काफ़ी कुछ हुआ है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने श्रीनगर में बीबीसी उर्दू संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
इस वक्त तो बहुत ही अनसर्टेनिटी का माहौल है, बहुत ही अस्त व्यस्त है पूरी व्यवस्था। कल हालांकि 8 दिन के बाद स्कूल और कॉलेजेस को खोला गया था और सरकार को ये आशा थी कि अब मामला ठंडा हो गया है, लेकिन जो ही स्कूल और कॉलेज खुल गए तो छात्र छात्राएं जो हैं वो सड़कों पे आए और पुलिस के साथ उनका वही जो है रिवायती मुठभेड़ हो गई और अफरा तफरी हो गई, दुकानें बंद हो गई। और कल ही जो है मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भेंटवार्ता की और उसके बाद दिल्ली में ही ये बताया कि 2 या 3 महीने में यहाँ के हालात जो है वो नियंत्रण में आएंगे और उसके बाद सभी लोगों के साथ बातचीत होगी। लेकिन जब वो ये कह रही थी तो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में उन्हीं की पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे पुलवामा में, अब्दुल गनी डार, उनकी हत्या की गई। और पुलिस का तो कहना है कि ये चरमपंथियों ने की है, लेकिन किसी चरमपंथी गुट ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो इस तरह से जो हालात हैं वो बहुत ही गंभीर बने हुए हैं।
इसकी क्या वजह क्या है, वो कश्मीर के स्थानीय मुद्दे हैं या फिर कुछ बाहरी मुद्दा है?
जी देखें, जहां तक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है या केंद्र सरकार का ताल्लुक है, वो तो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ के अलगाववादी तत्वों को उकसा रहा है और उसके लिए वो व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब से यहाँ पे चुनाव हुए हैं 9 अप्रैल से, तब से यहाँ पे इंटरनेट और बाकी चीजों पे प्रतिबंध लगा हुआ है, इंटरनेट तो चल नहीं रहा है। दूसरी बात ये है कि जाहिर है यहाँ पे जो अलगाववादी गुट है उनको तो पाकिस्तान का समर्थन हासिल है और जब भी यहाँ प्रदर्शन होते हैं, कल भी जो प्रदर्शन हुए तो उसमें पाकिस्तानी झंडे लहराए छात्रा छात्राओं ने और उन्होंने भारत विरोधी नारेबाजी भी की। कल भी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने, हालांकि उन्होंने उससे पहले तो बहुत ही हार्ड लाइन पोस्चर लिया था, लेकिन कल दिल्ली में उन्होंने बहुत ही नया पोस्चर लिया और उन्होंने कहा कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसको सुलझाने के लिए या कश्मीर की स्थिति जो है उसको बहाल करने के लिए बातचीत एक वाहिद एक मात्र रास्ता है।
ये भी कहा जा रहा है कि पीडीपी और बीजेपी के बीच में जो गठबंधन है उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और ये भी एक वजह हो सकती है कि अशांति पर उतना असरदार नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।
ये जो बीजेपी और पीडीपी के बीच अशांति का मामला है ये 4 दिन पुराना है, क्योंकि इसमें जो यहाँ की विधानसभा है उसके अपर हाउस में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ चुनाव होना था लेजिस्लेटिव काउंसलर्स के लिए, तो उसमें एक विधायक है उन्होंने पीडीपी के खिलाफ वोट दिया, हालांकि उन्हें पीडीपी के हक में वोट देना था जैसा कि उनका मुआहदा था। तो उसके बाद लेकिन काफी कुछ हुआ है, राम माधव जी ने जम्मू का दौरा किया है, उन्होंने पीडीपी के नेताओं से बात की है, उसके बाद राम माधव ने कल ही जो है ये बयान भी दिया है कि पीडीपी और बीजेपी के बीच जो मीडिया में अफवाहें उड़ रही हैं कि रिश्ते खराब हैं वो बिल्कुल नहीं है, तो हम एक ही स्टेज पे हैं। तो इससे मुझे लगता है ये तो क्योंकि 3-4 दिन का मामला है, तो लेकिन यहाँ पे जो हालात खराब हुए हैं वो April 9 से हुए, तो इसको इससे जोड़ना मुझे अजीब लगता है, क्योंकि जो छात्र छात्राएं हैं उनकी डिमांड, भले ही उनका कल्चरल फ्लेवर या उनके स्लोगन्स जो हैं आजादी वगैरह के लिए हों, लेकिन ये है कि यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कश्मीर यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन किया गया है पिछले 2-2.5 साल से, तो ये एक घुटन है और एक गुस्सा है जो फूट कर सड़कों पर आ रहा है।
भारत प्रशासित कश्मीर में पीडीपी नेता की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद तनाव और बढ़ गया है। ये थे श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। बड़ी खबर हमने आपको बताई थी, छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में मारे गए सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, और ये खबर रायपुर से छपने वाले अखबारों में किस तरह छपी है बताने के लिए रायपुर से एक बार फिर आलोक पुतुल टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बताएं आलोक साहब।
जी, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि अब सारे अखबारों में सुकमा की खबरें छाई हुई हैं। नवभारत अखबार ने अपनी खबर का शीर्षक दिया है, नक्सलियों ने फिर खेली खून की होली। दूसरे पन्ने पर अखबार ने ग्राउंड रिपोर्ट छापी, जिसमें बताया है कि कैसे नक्सलियों का मुकाबला करने वाले कोबरा बटालियन के बजाय सीआरपीएफ को मैदान में उतारने का नुकसान हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक दूसरे पन्ने पर अखबार ने सीआरपीएफ के घायल जवान की खबर विस्तार से छापी है, जिसमें कहा गया है कि माओवादियों से लड़ाई में स्थानीय पुलिस मदद नहीं करती है। नवभारत अखबार के पहले पन्ने पर ही अखबार के संपादक और नक्सली मामलों के जानकार रुचिर गर्ग की टिप्पणी है, सुकमा के झकझोरते सवाल। रुचिर गर्ग ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि हर बार मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति काम नहीं आ रही है, अब शायद समय इस बात का भी है कि सरकारें विकल्पों का विस्तार करें। अंग्रेजी के अखबार द हितवाद ने पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को प्रमुखता से छापा है, जिसमें कहा गया है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने दी जाएगी। वहीं दैनिक भास्कर ने ऐसे हमलों के बाद आने वाले सरकारी बयानों को निशाना बनाते हुए टिप्पणी प्रकाशित की है, आक्रोश का ऐसा उबाल किस काम का। पत्रिका अखबार ने भी कई तस्वीरों के साथ खबरें प्रकाशित की हैं, और नई दुनिया अखबार ने इस घटना को इस साल का 4था बड़ा नक्सली हमला बताते हुए शीर्षक लगाया है। वहीं अखबार ने अपने संपादकीय नक्सलवाद का कहर में लिखा है कि नक्सलियों से निपटने हेतु दीर्घकालिक रणनीति जरूरी है। अखबार का मानना है कि इस लड़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके अलावा अखबार ने अंदर के पन्नों पर दिलचस्प तरीके से यह विश्लेषण किया है कि बस्तर में सरकार अभी बैकफुट पर है। इस रिपोर्ट का शीर्षक राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह और माओवादी नेता रमन्ना को लेकर है कि बस्तर में रमन की चलती है या रमन्ना की।
बहुत शुक्रिया। ये थे रायपुर से आलोक पुतुल, समाचार पत्रों की सुर्खियां बता रहे थे रायपुर से छपने वाले अखबारों की। और आइए अब एक नज़र डालते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर, क्या कुछ छपा है आज। दिनेश उप्रेती मेरे सामने बैठे हुए हैं, कई अखबार आपके हाथ में हैं।
सुकमा में बड़े नक्सली हमले की खबर दिल्ली से प्रकाशित सभी अखबारों के भी पहले पन्ने पर है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने घाटी में पत्थरबाजी की तस्वीर के साथ महबूबा के बयान को हेडलाइन बनाया है, गोली और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। अखबार के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि किसी न किसी स्तर पर बातचीत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार घाटी में 2-3 महीने में स्थिति को नियंत्रित कर लेगी। दैनिक हिंदुस्तान ने इसी मुद्दे पर संपादकीय भी लिखा है, पथराव से वार्ता तक। संपादकीय लिखता है, कश्मीर को शॉर्टकट की नहीं लंबे धैर्य की जरूरत है, वहां केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयास से ही हालात सामान्य हो सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, केंद्र सभी गायों के लिए चाहता है आईडी।
किसके लिए?
गायों के लिए चाहता है आईडी।
अच्छा, आधार कार्ड।
आधार कार्ड की तरह एक विशिष्ट पहचान संख्या।
अच्छा।
अखबार के मुताबिक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि गायों की तस्करी रोकने के लिए वो गायों के लिए भी आधार की तरह विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूआईडी जारी करने के पक्ष में है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने मुख्य न्यायाधीश जेएस खेर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर बनी एक कमेटी की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
भारत की आबादी 1 अरब से ज्यादा है, कोई जानकारी है, कोई आंकड़ा है कि भारत में कितने मवेशी हैं, कितनी गाय हैं, कितने भैंस हैं, ये इस कुछ आंकड़े कुछ हैं इस तरह के क्या उपलब्ध?
इस तरह के आंकड़े सरकार के पास तो निश्चित रूप से मतलब किसी न किसी अध्ययन में मिले होंगे, अब ये तो सरकार ही जवाब दे सकती है इसका। नई दुनिया में मध्य प्रदेश की एक खबर छपी है जो काफ़ी चौंकाने वाली है, खासकर इस दौर में। खबर की सुर्खी है, पुलिस के साये में गांव में पहली बार बैंड बाजे से निकली दलित की बारात।
क्यों, ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा?
दरअसल वहां का जो दबंग गांव का जो दबंग समुदाय है वो जो है दलितों को बैंड बाजे के साथ बारात नहीं निकालने देता था। अखबार लिखता है कि आगरमालवा जिले के ग्राम माणा में दलित परिवार की शादी में बारात नहीं निकलने देने और बैंड बाजे नहीं बजने देने की शिकायत एक आदमी ने की थी, जिस पे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने वहाँ दिन भर मौजूद रहकर दलित की बेटी की बारात निकलवाई।
दिनेश जी, आपको नहीं लगता कि ये खबर ये बताती है, इसको संकेत करती है कि यदि पुलिस प्रशासन, शासन, सरकार सही तरीके से मदद करे तो दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को बिल्कुल रोका जा सकता है?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हमारी प्रशासनिक जो कमजोरी है उसको दिखाता है कि
ये खबर बताती है कि भेदभाव रोका गया
जी
पुलिस की मदद से।
जी पंजाब केसरी में एक खबर है जिसमें कि एड्स पीड़ितों को नौकरी से निकालने पर सजा के प्रावधान किया गया है। इस कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।
यानी अब किसी को एड्स होने की वजह से उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता कोई अब
जी। दैनिक भास्कर की एक दिलचस्प खबर है, आप ध्यान से सुनिएगा
जी जी,
कि न्यूजीलैंड में मिरेकल ऑफ चंडीगढ़।
अच्छा,
चंडीगढ़ की मान कौर ने 101 साल की उम्र में 100 मीटर की रेस 1:14 में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
कितनी उम्र है उनकी?
101 साल।
101 साल, यहाँ तो आप 100 मीटर नहीं दौड़ पाएंगे।
और खास बात यह है कि उन्होंने 93 साल की उम्र में ही खेलना शुरू किया और 12 प्रतियोगिताओं में वो अब तक 17 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं।
बहुत बढ़िया।
अच्छा संदीप जी, आप दिन भर में कितनी बार तनाव शब्द बोलते हैं?
पता नहीं, ये तो डिपेंड करता है आप कहाँ पर मौजूद हैं, घर में, दफ्तर में, सड़क पर, बाजार में।
तो अगर आप बोलते हैं तो इसे छोड़ना आपकी सेहत के लिए बेहतर हो सकता है, इस शब्द को ना बोलिए। ऐसा दावा है दैनिक भास्कर में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट का। शोध में कहा गया है कि तनाव शब्द बोलते ही केमिकल लोचा हो जाता है।
ये तो बिल्कुल कहीं सुनी पढ़ी बातें हैं कि भाई आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की विस्तार से समीक्षा करने के लिए। सुलखान सिंह उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक हैं, वो कहते हैं कि हम आम लोगों का भरोसा जीतेंगे और बेहतर कानून व्यवस्था लाकर देंगे। लेकिन जिस राज्य में पुलिस के एक आला अधिकारी के आवास पर भीड़ हमला कर दे वहाँ ये बात गले नहीं उतरती, तो ऐसे कैसे जीतेंगे आम लोगों का भरोसा आप? हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह से पहला सवाल यही पूछा।
देखिए, पुलिस का काम है दूसरों का मनोबल बना के रखना। पुलिस को इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी अधिकार दिए गए हैं और संसाधन दिए गए हैं। पुलिस अपनी सुरक्षा करने में सक्षम तो है ही, वो जनता की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है। तो इसके बाद ही अगर कोई घटनाएं होती हैं तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं। सहारनपुर में भी हमने 10 आदमी ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिए हैं, बाकी खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इससे सख्त कार्रवाई होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई वो उस तरह की दोबारा नहीं करना चाहे।
पिछले कुछ दिनों में पूरे राज्य में पुलिस के खिलाफ हिंसा के कई मामले देखने को मिले और हर जगह कुछ खास किस्म के लोग सामने आ रहे हैं, तो आपके लिए लग रहा है कि बड़ी चुनौती यही लोग बन रहे हैं?
देखिए, एक तो उद्दंडता के मामले होते हैं, लोग उत्साह में पुलिस से भिड़ जाते हैं और पुलिस का तो काम ही जोखिम भरा है। उद्दंड लोगों को, आपराधिक लोगों को, सशस्त्र लोगों को काबू में करना, तो इसलिए पुलिस को रिस्क रहता ही है, ये हमारा प्रोफेशनल रिस्क है।
कहीं गोर अच्छा के नाम पे और कहीं हिंदुत्व के नाम पे ये जो झंडा बुलंद करने वाले लोग हैं, ये तो अपराधियों से ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं अगर ये चलता रहा तो।
पिछले 4-6 दिन में कहीं कोई ऐसी खबर नहीं आई है। पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।
एंटी रोमियो स्क्वाड को लेके भी आपने कहा कि वो जारी रहेगा।
व्यवस्था 4 दिन चला के या 4 महीने चला के बंद नहीं की जाएगी, ये हमेशा चलती रहेगी। लेकिन हम जो स्क्वाड लगेंगे उनको स्पष्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि वो अपनी लिमिट से बाहर न जाए।
ये थे उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह। आज 2 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल पहले आज ही के दिन नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोगों की जान गई और ना जाने कितने लोगों के सपने हमेशा हमेशा के लिए बिखर गए। तब इन लोगों को दोबारा बसाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई थी। तो सवाल ये कि पिछले 2 साल में भूकंप पीड़ितों को कितनी राहत मिली, जानने के लिए हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने नेपाल में वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर से बात की।
2 वर्ष बीत चुका, लगता है कि अभी कुछ ही दिन पहले ही भूकंप हुई है,
लेकिन सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए इसके व्यवस्थापन के लिए वो नहीं हो पाई है। उस समय 8 लाख पूरा निर्माण करना था, इस तरह की आंकड़ा सरकारी आई हुई थी, लेकिन जमा 23,000 घर मात्र बन पाए हैं। आज भी 60,000 लोग हैं जिनके साथ पहले किस्त की अनुदान समझौता नहीं हो पाई है। लाखों लोग आज भी शिविर में रहने के लिए बाध्य की अवस्था है। 2 बरसात गुजर गए, तीसरी बरसात आने वाली है, इसलिए एक तनाव भी है और यह राजनीतिक सवाल भी बनता रहा है। और एक दूसरे पर लोग आरोप लगाते रहे हैं, सरकार इसके लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण है उस पर कहती है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सरकार पर कहती है, सरकार अन्य दलों को कहती है। इस बीच में 3 प्रधानमंत्री हो चुके नेपाल में, लेकिन बात बनती नहीं है। आज भी लोगों में निराशा है, चिंता है।
जब भूकंप आया था तब कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है उसने वचन दिया था कि वो नेपाल में पुनर्निर्माण के काम को आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए एक बड़ी रकम भी उन लोगों ने आपस में तय किया था कि वो दी जाएगी। तो क्या हुआ, वो दान नहीं आया या उस दान का या जो भी पैसा आना था वो उसका इस्तेमाल सही नहीं हुआ, क्या कहां समस्या रह गई?
ऐसा है कि पुनर्निर्माण के लिए कुल 938 अरब नेपाली रुपया की आवश्यकता थी। 100 रुपया भारतीय का 160 नेपाली रुपया होती है, लेकिन अभी तक 310 अरब रुपया मात्र उसकी प्रतिबद्धता हुई है, लेकिन उसके अनुसार भी नहीं आ पाई है। दूसरा, जो भी हमारा नेपाल का बजट था उस बजट में भी दात्री निकाय की प्रतिबद्धताओं के ऊपर अधिक अवलंबित रह गई, अपना बजट के आधार पर काम करने की कोशिश कम हुई। तो इस बार का जो आने वाला बजट है 20 दिन के बाद, तो सरकार सोच रही है कि अपनी आत्मनिर्भरता के आधार पर काम करें। बड़े धीमे रफ्तार से काम हो रही है, चाहे निजी क्षेत्र का हो या सरकारी क्षेत्र का, और इसके पीछे एक बजट तो है ही, दक्ष जनशक्ति की भी अभाव है, पर्याप्त समन्वय की भी कमी है, विभिन्न राजनीतिक दलों की उठापटक जो नेपाल की अस्थिर राजनीति है इसके कारण से भी जिस तरह से काम आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं हो पाया है।
विनाशकारी भूकंप के 2 साल बाद नेपाल में कितने बेहतर हुए हैं जमीनी हालात, जमीनी हकीकत बता रहे थे नेपाल से वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर। और अब चलिए खेल के मैदान में। कल आईपीएल में एक ही मैच खेला गया, ये मैच मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स के बीच था। रोमांचक मुकाबले में पुणे ने मुंबई को 3 रन से हरा दिया। खेल की बाकी खबरों के लिए राखी शर्मा।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से वुहान में शुरू हो रही एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु ने जनवरी में सैयद मोदी ग्रैंड प्री गोल्ड का खिताब जीता था, जबकि इसी महीने वो इंडिया ओपन चैंपियन बनी। सिंधु पहले दौर में इंडोनेशिया की दिनारदिया आयुस्टीन से भिड़ेंगी। मलेशिया ओपन के पहले दौर में शिकस्त के बाद सिंगापुर ओपन से बाहर रही हैदराबाद की ही साइना नेहवाल अपने अभियान की शुरुआत जापान की सयाका सातो के खिलाफ करेंगी। दुनिया की 8वें नंबर की खिलाड़ी साइना ने जापान की खिलाड़ी के खिलाफ 7 में से अपने 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। पिछली विश्व रैंकिंग में करियर का सर्वश्रेष्ठ 13वां स्थान हासिल करने वाले अजय जयराम पुरुष एकल में 5वीं वरीयता प्राप्त चीन के टियान हाउवेई से भिड़ेंगे। वहीं एचएस प्रणॉय का मुकाबला हांगकांग के एनजी का लॉन्ग एंग से होगा। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अब तक भारत की तरफ से सिर्फ दिनेश खन्ना ही इस खिताब को जीत पाए हैं। और अब बात टेनिस की। मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीतने के बाद एटीपी की ताजा वर्ल्ड डबल्स रैंकिंग में भारत के रोहन बोपन्ना लगभग 6 महीने बाद फिर से टॉप 20 में पहुंच गए। वहीं अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स महिलाओं की WTA सिंगल्स रैंकिंग में फिर से नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। बोपन्ना और उरुग्वे के उनके जोड़ीदार पाब्लो कुएवास ने मोनाको में खेले गए फाइनल में स्पेन के फेलिसियानो लोपेज और मार्क लोपेज की जोड़ी को 6-3, 3-6, 10-4 से हराया था। इस जीत से बोपन्ना को 6 पायदान का फायदा हुआ और वो 18वें स्थान पर काबिज हो गए। बोपन्ना अब भारत के नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी हैं। उनके बाद लियांडर पेस 52वें नंबर पर आते हैं, जो 1 पायदान आगे बढ़े हैं। वहीं महिलाओं की सिंगल्स रैंकिंग में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को हराकर फिर से नंबर 1 बनी हैं। चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा 3रे नंबर पर हैं। महिलाओं की डबल्स रैंकिंग में भारत की सानिया मिर्जा 7वें स्थान पर बनी हुई हैं। सानिया के 6,705 अंक हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को माओवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कम से कम 25 जवान मारे गए हैं और 7 अन्य घायल हैं। सीआरपीएफ के 7 जवान लापता भी हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन लेपेन ने कहा है कि वह नेशनलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ रही हैं। पहले चरण के मतदान में लपेन मध्यमार्गी इमैनुअल मैक्रों के बाद दूसरे स्थान पर रही थीं। राष्ट्रपति पद के लिए लपेन और मैक्रों के बीच दूसरे और निर्णायक दौर का चुनावी मुकाबला 7 मई को होगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिनेश उप्रेती और स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। नमस्कार भारत में आज इतना ही। दीजिए इजाजत संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को। नमस्कार।